नमस्कार भारत, 23 नवंबर शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के कार्यक्रमों को लेकर अयोध्या में बड़ी हलचल, धारा 144 लागू।
हम ये बात अब शायद हिंदू समाज का रूप दिखाकर सबको बताना चाहते हैं कि ये विषय जिंदा है, इसको अपनी प्रायोरिटी में रखें।
जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से क्या आसान हो गई है बीजेपी की राह।
आइडेंटिटी की लड़ाई यहाँ पे न दलितों ने लड़ी है, न आदिवासियों ने लड़ी है, न ओबीसी ने लड़ी है।
आईसीसी महिला विश्व T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत की टक्कर जारी। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। ब्रिटेन में रूस के जासूस सर्गेई स्क्रिपल पर हुए नर्व एजेंट के हमले की जांच कर रहे एक ब्रितानी जांचकर्ता ने बीबीसी से कहा है कि हमला करने वाले के पास इतनी मात्रा में नोविचोक था कि उससे 1000 लोग मारे जा सकते थे। डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर डीन हेडन ने कहा कि दो संदिग्धों ने बहुत ही लापरवाही से काम किया था। ये दोनों सर्गेई स्क्रिपल के घर गए और वहां उन्होंने जिस परफ्यूम की बोतल में नर्व एजेंट नोविचोक को रखा था उसे गलत तरीके से नष्ट किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की खुफिया जांच एजेंसी CIA के उस आंकलन को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के विषय में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जानकारी थी। फ्लोरिडा में पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में क्राउन प्रिंस के ऊपर सारा दोष नहीं डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि कौन यह बात कह रहा है कि क्राउन प्रिंस ने वह हत्या करवाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया या नहीं। उन्होंने शुरुआत से इस बात से इनकार किया है। उनके पिता ने भी इसे नकारा है। CIA ने भी कभी नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा किया। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्यूनीशिया में सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल सरकार के उस फैसले के बाद बुलाई गई है जिसमें सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह ना बढ़ाने का फैसला लिया था। पिछले 5 साल से ट्यूनीशिया में यह सबसे बड़ी हड़ताल है जिसके चलते स्कूल, यूनिवर्सिटी और मंत्रालय बंद हैं। हालांकि आपातकालीन स्थिति में अस्पताल खुले हैं। ट्यूनीशिया की सरकार IMF के बढ़ते दबाव के चलते अपना राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिशें कर रही है। देश के ट्रेड यूनियन के महासचिव नॉर्डिन तबोबी ने कहा कि सरकार को जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने कहा, सत्ता पर काबिज गठबंधन देश के हालात के लिए जिम्मेदार है, चाहे वे आर्थिक हालात हों या सामाजिक हालात। देश के सभी राजनीतिक दलों को देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। ये थे ट्यूनीशिया में ट्रेड यूनियन के महासचिव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा है कि ब्रेग्जिट समझौता अब उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि दोनों ही पक्ष ब्रिटेन की ओर से जारी किए गए मसौदे पर सहमत हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन के ही कुछ विपक्षी सांसदों ने इस मसौदे का विरोध किया है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने इस मसौदे को 26 पन्नों की बकवास बताया है। रविवार को यूरोपीय देशों के नेताओं की मुलाकात होने वाली है जिसमें इस मसौदे के अलावा सुरक्षा, व्यापार और सामाजिक मसलों पर भी चर्चा होगी। जिम्बाब्वे की सरकार अपने देश में मौजूद गोरे किसानों को करीब $53 मिलियन की राहत देने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में इन किसानों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाया गया था जिसके चलते इन किसानों को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी थी। राहत के लिए तय की गई रकम अगले साल के बजट में शामिल होगी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि देश को बहुत अधिक घाटा हो सकता है। दरअसल अमरीका ने जिम्बाब्वे पर लगे प्रतिबंध हटाने के बदले यह मुआवजा देने की बात रखी थी। फ्रांस और जापान ने कार निर्माता कंपनी रेनॉ, निसान और मित्सुबिशी के एक साथ रहने का समर्थन किया है। निसान कंपनी के चेयरमैन कार्लोस घोसन को वित्तीय मामलों की गड़बड़ियों के चलते कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से निकाल दिया गया था। उन्हें सोमवार को टोक्यो में गिरफ्तार किया गया था। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्मसभा और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हलचल बढ़ती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि धर्मसभा में 1,00,000 से ज्यादा लोग आएंगे और अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लेंगे। इस बीच अयोध्या और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस पूरे मामले में सुनिए समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
आगामी 24 और 25 नवंबर को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे अपने सांसदों, विधायकों और समर्थकों के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां संतों से बातचीत करके वो राम मंदिर के निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। शिवसेना प्रमुख का ये कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी 25 नवंबर को ही धर्मसभा का ऐलान करके माहौल को और गर्म कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय सवाल का जवाब तो नहीं देते कि धर्मसभा का आयोजन शिवसेना के कार्यक्रम के दिन ही क्यों रखा गया है, लेकिन धर्मसभा के आयोजन की वजह ये बताते हैं।
अदालतों में मामले लटके हैं, 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, हमारी फाइल ही नहीं खुली। जब खुलने का नंबर आया तो बेकार के बिंदुओं पर समय खर्च कराते रहे, बर्बाद कराते रहे। अब कोर्ट में ये विचार आ गया कि भाई हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, तो भाई हमारी प्रायोरिटीज़ और हिंदू समाज की प्रायोरिटीज़ दोनों एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए हम ये बात अब शायद हिंदू समाज का रूप दिखाकर सबको बताना चाहते हैं कि ये विषय जिंदा है, इसको अपनी प्रायोरिटी में रखो।
चंपत राय का जोर इस बात पर भी था कि कम से कम 1,00,000 लोग 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन ये 1,00,000 लोग अयोध्या क्यों पहुंचेंगे, मंदिर निर्माण के लिए किस पर दबाव बनाएंगे और अयोध्या जाकर ये लोग करेंगे क्या, ऐसे सवालों पर उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि VHP ने आनन फानन में धर्मसभा की तारीख 25 नवंबर ही क्यों चुनी है। लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
शिवसेना मतलब हाईएक में कर ले इशू, एक तो ये कारण है क्योंकि शिवसेना ने तो जुलाई में ही अनाउंस कर दिया था कि हम अक्टूबर नवंबर जाके करेंगे, उसको इन्होंने काउंटर करने के लिए डेटेड करके अपना एक तो ये कर दिया है। शिवसेना का उत्तर प्रदेश में या कुछ है नहीं उस संदर्भ में, तो नहीं कुछ हाईएक कर लेते, लेकिन ये जरूर है कि वो सरकार को और रूलिंग पार्टी को कटघरे में तो खड़ा ही करते ना, तो उससे तो सरकार के लिए और रूलिंग पार्टी के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाता कि साहब इस नाम पर आप आए, पंचायत से लेके आपके पास राष्ट्रपति तक पार्लियामेंट तक कब्जा, इसका कोई जवाब नहीं होता आपके पास। विश्व हिंदू परिषद का शो है, वो आप कह सकते हैं कि वो एक कुशन का काम करेगा गवर्नमेंट के लिए, कि उसके ऊपर जो अटैक होंगे वो VHP जहां से मुद्दा उठाएगी वो थोड़ा सा रोक लेगी।
दरअसल शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने 2 महीने पहले ही 25 नवंबर को अयोध्या आने और यहां राम मंदिर के लिए संकल्प लेने का ऐलान किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत इस दौरान कई बार अयोध्या और लखनऊ आकर इसके लिए माहौल का जायजा ले चुके हैं और पिछले 2 दिनों से अयोध्या में ही डेरा डाले हुए हैं।
सभी सांसद, सभी MLA, सब लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता 24 को आ जाएंगे। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहाँ अयोध्या वासियों की तरफ से उनका सम्मान होगा, आशीर्वाद समारोह होगा। नृत्य गोपाल दास जी के अध्यक्षता में सभी साधु साधु संत यहाँ रहेंगे, मंच पर आशीर्वाद मिलेगा उद्धव जी को उनके कार्य के लिए, उनके संकल्प के लिए।
जानकारों के मुताबिक उद्धव ठाकरे जिस तैयारी और प्रचार प्रसार के साथ अयोध्या आ रहे हैं वो VHP और उससे जुड़े संगठनों को हैरान करने के लिए पर्याप्त था। उद्धव ठाकरे से पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया भी अयोध्या में अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को VHP उस रणनीति पर विचार करेगी कि कैसे इस मुद्दे पर घर घर संपर्क किया जाए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे राजनीतिक वजह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्रशासन इन दोनों कार्यक्रमों को देखते हुए सतर्क है और पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। समीरात्मज मिश्र, BBC अयोध्या।
मंगलवार को राजस्थान के अलवर में 4 युवकों ने कथित तौर पर चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। ऐसा कहा जा रहा है कि वो नौकरी न मिलने के कारण परेशान थे। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इस समय अलवर में मौजूद हैं। नितिन, अब तक क्या पता चल पाया है इस घटना के कारणों के बारे में आपको?
आदर्श, अभी तक जो स्थिति है वो एकदम साफ नहीं हुई है। हम कल देर रात यहाँ पर पहुंचे और इत्तेफाक से हम अलवर रेलवे स्टेशन जो है उसके बगल में ही हम रुके हुए हैं, उसके पास में ही जो मेन शहर के अंदर रहाइश है। देर रात हमारी अलवर के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह से बात हुई, काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने बात की और उनका ये कहना है कि इस मामले पर वो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि दरअसल ये एक सुसाइड की घटना है या एक एक्सीडेंट है। उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि 6 युवक 20 की शाम ट्रेन की पटरियों के पास थे, अलवर स्टेशन के पास। इसमें से 3 युवक जो थे वो उनकी मौत हुई है ट्रेन के सामने आने से। इसकी उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वो खुद कूदे ट्रेन के सामने या वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन 2 युवक राहुल और संतोष वहां से बच के पहले ही निकल आए पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, और एक चौथे अभिषेक मीणा जो है वो घायल हुए हैं, उनका इलाज जयपुर के अस्पताल में कराया जा रहा है। जो 3 युवक जिनकी मौत हुई है वो मीणा समुदाय के थे, और इतनी जानकारी अभी हमारे पास आ सकी है आदर्श। और आज दोपहर में हम छानबीन करेंगे, उन युवकों के गांव जाएंगे, तो शाम को अपने श्रोताओं को कुछ और पुख्ता जानकारी के साथ संबोधित करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। 28 नवंबर को यहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अब तक प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सीटों पर उम्मीदवार उतारकर खेल को दिलचस्प बना दिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या बीएसपी के आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की राह आसान हो गई है? भोपाल से सुनिए बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
इनकी सोच, नीति और नियत लगभग एक जैसी है, एक ही थैली के हम लोग चट्टे बट्टे मानकर चलते हैं। ना कांग्रेस के राज में आपका भला हुआ है और बीजेपी के राज में तो भला हो ही नहीं सकता।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भोपाल में मंगलवार को एक रैली को संबोधित करते हुए जिस तीखे अंदाज में बीजेपी पर हमला बोल रही थी, उसी तेवर के साथ कांग्रेस पर भी। मध्य प्रदेश के चंबल, बुंदेलखंड और बिंध्य इलाके में दलितों और अति पिछड़ी जातियों की बड़ी तादाद है। इन इलाकों में बीएसपी की संभावनाएं हमेशा से रही हैं। पिछले 2 चुनावों से बीएसपी मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत के मामले में 3rd नंबर पर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में है और उम्मीद जताई जा रही थी कि बीएसपी और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए साथ आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी फायदे में रहेगी। कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी और कांग्रेस साथ होती तो चंबल का दंगल बीजेपी पर बहुत भारी पड़ता। स्मृति शर्मा इसी इलाके के गांव में एक एनजीओ के लिए काम करती हैं। उनका भी मानना है कि कांग्रेस अगर मायावती के साथ होती तो इस इलाके में बीजेपी की राह आसान नहीं होती।
अगर ये दोनों साथ आते तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है ही और कहीं ना कहीं पुख्ता हो जाती है ये चीज। पर अब हम देखते हैं कि चीजें किस तरह जाएंगी, पर शायद बल मिल सकता था और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल सकती थी उस तरफ से।
कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत जमीन है, लेकिन मायावती इसे भुनाने में नाकाम रही हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सुखलाल कुशवाहा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को सतना से हरा दिया था। अर्जुन सिंह 3rd नंबर पर थे और 2rd नंबर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा थे, मतलब कुशवाहा ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था। बीएसपी को मध्य प्रदेश के 1993 और 1998 के विधानसभा चुनाव में 11-11 सीटों पर जीत मिली थी। 2003 में बीएसपी की सीटें 11 से 2 पर आ गईं। 2008 में बीएसपी को 8 सीटों पर जीत मिली और 2013 में 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। मध्य प्रदेश में दलित 16% हैं और इनके लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इनकी मजबूत जमीन होने के बावजूद बीएसपी क्यों पिछड़ जाती है? ग्वालियर के जीवाजी राव यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एसपी चौहान मानते हैं,
यहाँ पे कोई दलित मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे 23% के करीब आदिवासी, कोई आदिवासी मूवमेंट नहीं हुआ। केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एकता परिषद आदिवासियों की, तो वो उनके फॉरेस्ट राइट्स के लिए, वो उनकी जमीनों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन आइडेंटिटी की लड़ाई यहाँ पे ना दलितों ने लड़ी है, ना आदिवासियों ने लड़ी है, ना ओबीसी ने लड़ी है।
अगर बीएसपी और कांग्रेस में गठबंधन ना होना बीजेपी की जीत का कारण बनता है तो 2019 के आम चुनाव पर भी इसका साफ असर पड़ेगा। रजनीश कुमार, बीबीसी भोपाल।
कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीबीसी संवाददाता नीलेश धोत्रे ने चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की और पूछा कि उनकी पार्टी 15 सालों से चली आ रही बीजेपी सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है।
जो जिम्मेदारी मेरे पार्टी ने मुझे दी है चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में, उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। मैं स्वयं कभी भी किसी कुर्सी या पद का अभिलाषी नहीं हूँ। जो पार्टी तय करेगी सिर माथे।
बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान अपना फेस है और दूसरी तरफ आप देखे जाए तो कांग्रेस में कोई फेस दिया नहीं है। एक तरफ 15 सालों का इतना काम है शिवराज सिंह चौहान का, तो किस तरह से कांग्रेस टैकल करेगी इसको?
देखिए, जो चेहरा है भाजपा का वह चेहरा अब नहीं चलने वाला, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि उस चेहरे के आधार पर शायद खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़े। कांग्रेस पार्टी में हम लोग एक मिलकर कार्य कर रहे हैं, एकता के सूत्र में हम लोग बन चुके हैं। उसी के आधार पर हर निर्णय हर विषय पर चर्चा करके हम लोग आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि पंचायत स्तर पर गौशाला खोलेंगे या फिर रामगमन पथ बनाएंगे। एक विभाग आप शुरू करने वाले जिसका नाम है आध्यात्मिक विभाग, आपने कहा है, क्या कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी पार्टी बन चुकी है?
मुझे तो आश्चर्य है कि आप जैसे लोग हमारे वचन पत्र को लेकर केवल 1% पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी 99% में भी उतना ही ध्यान देते तो शायद अच्छा होता। जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं, जहां हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, जहां हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा हिंदू धर्म की बात करे या गौशाला की बात करे तो बिल्कुल सही है आपके मायने में। अगर कांग्रेस बात करे तो जुल्म है। हिंदू धर्म क्या भाजपा की ही बपौती है?
कांग्रेस का आर्थिक विवंचना में है क्योंकि दिव्या स्पंदना जो आपकी नेता है उन्होंने बीबीसी के बियॉन्ड फेक न्यूज कार्यक्रम है उसने कहा था कि फेक न्यूज से लड़ने के लिए कांग्रेस को बहुत पैसे की जरूरत है। एक दूसरी चीज, राजस्थान में इस वक्त राजस्थान के आपको जो सचिन पायलट है या फिर गहलोत जी, उनके फोटो आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, कैंपेन चल रहा है और उसे पब्लिक फंडिंग की बात करते हैं, तो कांग्रेस आर्थिक विवंचना में है इस वक्त।
देखिए, चुनाव केवल पैसे के आधार पर नहीं लड़ा जाता, चुनाव मूल्यों के आधार पर लड़ा जाता है, सिद्धांतों के आधार पर लड़ा जाता है, अपनी क्रिया शैली कार्य शैली के आधार पर लड़ा जाता है। राशि की जरूरत होती है पर राशि एकमात्र अंग नहीं है चुनाव जीतने का। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास जितना फंडिंग है उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारत में इतने बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, क्या किसी भी संग्राम में केवल राशि के आधार पर प्रचलित होता था क्या? अगर वो बात होती भारत तो कभी भारत के फ्रीडम मूवमेंट में वो गति नहीं आती। ये देश भावनात्मक है, सिद्धांतों का देश है, मूल्यों का देश है।
आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आज सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की 550वीं जयंती है। इस मौके पर भारत सरकार ने गुरुवार को डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की ताकि सिख श्रद्धालु गुरु नानक की कर्मस्थली करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन कर सकें। पाकिस्तान में मौजूद बीबीसी संवाददाता उमर दराज ने करतारपुर साहिब जा रहे श्रद्धालुओं से बातचीत की। सुनिए, उमर दराज ने हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी को क्या बताया।
यहाँ पर हमारी कुछ सिख यात्रियों से मुलाकात हुई कल, जो कि बाबा गुरु नानक के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए मनकाहा साहिब में मौजूद थे, तो उन लोगों के लिए काफी खुशी की बात थी। उन्हें खाना पाया जाता था और उन लोगों का कहना था कि ये बहुत अच्छा होगा अगर ये सड़क खुल जाती है। लेकिन साथ ही कुछ लोग जो है उन्होंने सदन का इजहार भी किया कि गवर्नमेंट जो है वो अक्सर अनाउंसमेंट कर देती है इस किस्म की, लेकिन बाद में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर ये अनाउंसमेंट हुई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो पहले ही इसके ऊपर अपना एग्रीमेंट हो कर सकती है, तो इससे लगता ये है कि अब वो बॉर्डर खुलने में ये पहला कदम होगा और मुमकिन तौर पर वो बॉर्डर जो है वो जल्दी खुल पाएगा।
पाकिस्तान में मौजूद करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारतीय सीमा से कितनी दूर है और इस गुरुद्वारे की सिखों में कितनी अहमियत है?
बेसिकली करतारपुर जो है ये उस इलाके का नाम है और वहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसको गुरुद्वारा दरबार सिंह कहते हैं। तो ये सिख बिरादरी जो है उनके जो मुकद्दस मकामात हैं, जो उनके सेक्रेट प्लेसेस हैं, उनमें इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि गुरु नानक जी जो थे उनका देहांत जो है, उनकी वफात जो है वो इधर ही हुई थी और वो उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ 18 बरस जो है वो इस जगह पे गुजारे। कहने में ये भी आता है कि करतारपुर का जो नाम है ये भी गुरु नानक जी ने ही तजवीज किया था। अब ये है कहाँ पर, ये पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है करतारपुर के इलाके में, करतारपुर पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है नारोवाल, उसके अंदर आता है और उसके बाद एक जो आगे तहसील है उसको शकरगढ़ कहते हैं। तो शकरगढ़ के अंदर ये एक गाँव है जिसके अंदर ये गुरुद्वारा वाकई है। तो गुरुद्वारा जो इटसेल्फ जो उसकी बिल्डिंग है वो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। इंडियन बॉर्डर के ऊपर वहाँ पर एक पॉइंट कायम किया गया है जहाँ से अब सिख यात्री जो है वो दूरबीन स्क्रीन के जरिए इसको देख सकते हैं, क्योंकि वो पार तो नहीं कर सकते सड़क, तो ये इतना करीब है।
भारत सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि वो अपनी ओर से कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान सरकार का इस पे क्या रिएक्शन रहा?
पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका ये कहना था कि वो इसको वेलकम करते हैं और ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पीस बिल्डिंग की तरफ भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, एक अच्छा कदम होगा। और अब इस हवाले से जो मॉडेलिटी है वो तय करनी पड़ेंगी कि वो कॉरिडोर जो है वो किस तरह तामीर किया जाए। इसके कॉरिडोर के हवाले से जो सजेशन है वो ये है कि ये वीजा फ्री कॉरिडोर होगा, जिसमें कि करतारपुर के जो गुरुद्वारा है वहां तक यात्रियों को एक्सेस दी जाएगी, तो वो बगैर वीजा के वहां तक आके और वो दर्शन करने के बाद फिर वापस जा पाएंगे। तो अब देखना ही है कि इंडियन कैबिनेट ने उस कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया है, तो पाकिस्तानी साइड पर गवर्नमेंट जो है वो इसकी तरफ करती है और कब इसके ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम कब और कैसे स्टार्ट होता है।
आप सुन रहे थे बीबीसी संवाददाता जो कि पाकिस्तान से, उनसे बात की उमरदराज से हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी ने।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। नवीन, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
जी आदर्श, आज दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी लीड स्टोरी बनाया है। जैसे कि मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस रखा है और उसमें सबसे ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाने वाले कॉरिडोर की जो घोषणा की गई है उसे सबसे पहली खबर बनाया है इंडियन एक्सप्रेस ने। और उसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जद्दोजहद और विधानसभा भंग होने के बाद नेताओं के बयानों को प्रमुखता दी गई है। अखबार ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस बयान को शीर्षक बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक अपवित्र गठबंधन को सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे और यह बात उन्होंने कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के संबंध में कही थी। आदर्श, इसके साथ ही दिल्ली के नए मुख्य सचिव का नाम तय हो गया है और हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी विजय देव अब दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे, वे अंशु प्रकाश की जगह लेंगे। अंशु प्रकाश का ट्रांसफ़र केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत हो गया था और अंशु प्रकाश को हम जैसे कि पहले से भी श्रोता जानते होंगे कि अंशु प्रकाश और दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच विवाद रहा था, मारपीट की ऐसे कथित मारपीट की खबरें भी सामने आई थी। और विजय देव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अभी तक वे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे।
जी, मैं इस वक्त दैनिक भास्कर पर एक बड़े ही एक रोचक अंदाज में जो इन्होंने खबर पेश की है और वो ये है कि मनोज तिवारी बाइज्जत बरी, आप इसको इस तरह से पढ़ना चाहें और आप इसको बेइज्जत बरी के तरीके से भी पढ़ सकते हैं।
दरअसल शीर्षक को इस तरीके से लिखा है।
हाँ, तो ये दरअसल जो सीलिंग केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी पर अवमानना का मामला बंद किया है लेकिन साथ में एक कड़ी फटकार भी लगाई है, उसे लेकर ये इस तरह से पेश किया गया है।
जी, और एक और हिंदी अखबार मेरे हाथों में है हिंदुस्तान, जिसमें प्रकाशित खबर में बताया गया है कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की केंद्र सरकार की जो मुहिम है उसको उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। और अखबार ने जो शीर्षक लगाया है वह ये है कि 70 देशों के काले धन का सुराग मिला है। खबर के मुताबिक आयकर विभाग को विदेशी लेन देन से जुड़ी 30,000 से ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं जिसमें कई संदिग्ध बताई गई हैं। और अखबार लिखता है कि संदिग्ध लेन देन को लेकर आयकर विभाग ने इनमें से करीब 400 लोगों को नोटिस भी भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची पाउडर से हमला हुआ था 2 दिन पहले और इस पर चर्चा करने के लिए अब दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार सोमवार को बुलाए गए इस विशेष सत्र में केजरीवाल पर हुए हमले पर चर्चा की जाएगी, साथ ही आम आदमी पार्टी के उन आरोपों पर भी चर्चा होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बहुत से वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इससे पहले हमले के बाद केजरीवाल ने कहा था कि शायद भारत के इतिहास में वे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर 2 साल के भीतर 4 बार हमला हो चुका है। आदर्श, और केजरीवाल ने अपनी जान को खतरा भी बताया था।
जी, एक और मैं जो खबर देख रहा हूँ वो ये कि जो अंडमान में जो एक अमरीकी नागरिक की जो एक हत्या हुई है जो कि बिल्कुल उसे लेकर ये जानकारी सामने आई है कि उन्हें पहले बंधक बना के रखा गया और जो जनजाति आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो इस बात से नाराज हो गए कि उनको कुछ गिफ्ट दिया गया जिससे वो नाराज हुए। और खास बात एक और ये है, दैनिक भास्कर ने ये लिखा है कि मौत से एक दिन पहले उन्होंने लिखा था कि 10 साल के एक आदिवासी बच्चे ने पहले तीर मारा था और मैं भाग गया और मैं फिर जाऊंगा।
जी आदर्श, तो ये
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब समय है खेल समाचारों का। हमारे साथ हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश, इस समय हम मैच देख रहे हैं, ये क्या स्थिति है?
जी देखिए, वेस्ट इंडीज में जो ICC महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसका दूसरा सेमीफाइनल इस समय चल रहा है। हालांकि भारत में सुबह, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वहाँ तो देर रात है, और भारत के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी पूरी पारी थोड़ी ही देर पहले 19.3 ओवर में 112 रन पर सिमट गई और भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती नज़र आई। जिस तरह से आज इंग्लैंड की गेंदबाजों ने बहुत ही दमदार गेंदबाजी की, खासकर हीदर नाइट, जिन्होंने 3 विकेट लेकर भारत के बल्लेबाजों की कमर पूरी तरह से तोड़ी, जबकि इससे पहले क्रिस्टी गॉर्डन ने 2 विकेट लिए। उनके अलावा नताली स्काइवर और हैज़ल ने भी बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की, और ये जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला था शायद भारत के पक्ष में नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कप्तान हरमनप्रीत कौर से, वो केवल 16 रन बना सकी। जेमिमा रॉड्रिक्स, जो कि बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, 26 रन भी उनके बल्ले से निकले लेकिन वो रनआउट हो गई। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज तानिया भाटिया ने 11 रन बनाए, स्मृति मंधना के बल्ले से 34 रन निकले। तो ये जो शुरुआती 4 खिलाड़ी थी, इन्होंने शुरुआत में जमने में भी कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके बाद इनके बल्ले से रन इसलिए नहीं निकले क्योंकि जो इंग्लैंड की गेंदबाजी थी, एक तो कसी हुई गेंदबाजी, दूसरा उनका क्षेत्र रक्षण बहुत ही शानदार था। तो ये भारत के लिए शुरुआती दौर में एक झटके वाली बात है। अब देखना होगा कि जो भारतीय गेंदबाज है क्या वो इंग्लैंड को अपनी स्पिन के जाल में फंसा पाते हैं नहीं। जबकि इससे पहले वाले मुकाबले की बात की जाए तो वहाँ मेज़बान वेस्ट इंडीज़ का तो और भी बुरा हाल रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसे 71 रन से करारी मात दी, और देखिए 71 रन ही बना पाई क्योंकि दरअसल जीत के लिए जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी 143 रनों का लक्ष्य था और उसकी टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई, यानी 20 ओवर 17.2 ओवर में सिमट गई। और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की कप्तान जो थी स्टेफनी टेलर, हालांकि वो टॉस जरूर हार गई लेकिन जब उनकी टीम को बल्लेबाजी की दावत का मौका मिला तो उन्होंने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 142 रन बनाए, और ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थे जिसे भारत ने अंतिम ग्रुप मैच में आसानी से हराया था
जी।
और भारतीय टीम जिस तरह से लगातार जीत के रथ पर सवार थी ग्रुप मैचेस में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को लगभग आसानी से हराया,
लेकिन अभी जो ये जब लगातार जो विकेट गिरे तो इसमें क्या लगा कि जो मिताली राज का अनुभव था क्या वो काम आता?
जी हाँ बिल्कुल, अनुभव काम आ सकता था अगर उन्हें खिलाया जाता तो, क्योंकि देखिए कम से कम 20 ओवर तो पूरे खेल ही सकती थी क्योंकि उनमें एक छोर पर विकेट पे टिकने की क्षमता है। लेकिन देखिए अनुभव काम आ रहा है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो दिल्ली में हो रही है वहाँ MC मैरी कॉम के मुक्कों के सामने सब बेदम है और वो अब फाइनल मुकाबले में पहुंच गई हैं जहां उनका सामना कोरिया की किम हियांग बी से, कल जिस तरह से उन्होंने हराया 5-0 से, अब यूक्रेन की हाना अखोटा से उनका मुकाबला होगा। और नज़रें रहेंगी आज जैसे ही ये महिला वर्ल्ड 2020 मुकाबला खत्म होगा, दोपहर में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है मेलबोर्न में, और भारतीय टीम पर कड़ी नज़र इसलिए रहेगी क्योंकि अगर भारतीय टीम आज हारी तो ये बड़बोली भारतीय टीम आज सीरीज भी हार जाएगी, इसलिए करो या मरो वाला मुकाबला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सामने।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी। और अब विदा लेने से पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार। ब्रिटेन में रूस के जासूस सर्गेई स्क्रिपल पर हुए नर्व एजेंट के हमले की जांच कर रहे एक ब्रितानी जांचकर्ता ने BBC से कहा है कि हमला करने वाले के पास इतनी मात्रा में नोविचोक था कि उससे 1,000 लोग मारे जा सकते थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की खुफिया जांच एजेंसी CIA के उस आंकलन को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के विषय में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जानकारी थी। ट्यूनीशिया में सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल सरकार के उस फैसले के बाद बुलाई गई है जिसमें सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह न बढ़ाने का फैसला किया था। फ्रांस और जापान ने कार निर्माता कंपनी रेनॉ, निसान और मित्सुबिशी के एक साथ रहने के का समर्थन किया है। निसान कंपनी के चेयरमैन कार्लोस घोसन को वित्तीय मामलों की गड़बड़ियों के चलते कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से निकाल दिया गया। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें, नमस्कार।